की
जय,
गोद्रमद्वीप धाम की
जय,
नवद्वीप धाम की
जय,
मिथाई गौर प्रेमानंदे सबका निर्माण राधा रानी ने अपने हाथों से किया। तो श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी ने फिर इसमें बैठकर बंसुरी बजाई है। आप जानते हैं ना कृष्ण के मुरली के गुरु कौन है, क्योंकि राधा रानी ने उनको मुरली सिखाया। विश्व भर में उनका नाम है मुरलीधर, लेकिन मुरलीधर के गुरु हैं राधा रानी। तो उन्होंने वहां पर बैठकर एक सुंदर बनाकर मुरली बजाई और मुरली की तान सुनकर कृष्ण भगवान भाग भाग के आए गोलोक से और इतने प्रसन्न हुए इस सुंदर धाम को देखकर। तो धाम नवद्वीप धाम को कहते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं यहाँ पर सारे ऋषियों को बुलाऊंगा, सारे देवताओं को देवियों को बुलाऊंगा, सारे धामों को बुलाऊंगा, इतने भी तीर्थ स्थान के नाम से प्रसिद्ध है वो सबको मैं यहाँ बसाऊंगा, मेरे भक्तों को ग्वाल बालों को लेकर आऊंगा और मैं यहीं रहूंगा, मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। और वो धाम है नवद्वीप धाम। तो नवद्वीप धाम और श्री वृंदावन धाम अलग नहीं है, जगन्नाथपुरी धाम भी अलग नहीं है। जो भी व्यक्ति सोचता है कि इसमें अंतर है वो धाम अपराधी है, इससे धाम अपराध हो जाता है, धाम का लाभ उसको नहीं मिलता। तो वृंदावन धाम में सारे तीर्थ विराजमान हैं, नवद्वीप धाम में भी सारे तीर्थ विराजमान हैं और जगन्नाथपुर में भी सारे तीर्थ विराजमान। तो ये स्थान जो है वो जगह जगह प्रकट हो रहे हैं। तो आज हम भगवान की श्री गौरांग महाप्रभु की असीम कृपा से गोद्रुम धाम में आए और ये गोद्रुम द्वीप जो है ये साक्षात नंदग्राम है, इसलिए हमने नंद यशोदा दुलार ये भजन गाया। और फिर बाद में हमने गौरांगा पुकारा, है ना, आवाज क्यों आ रही थी। तो गौरांगा पुकारने का यहां पर एक विशेष महत्व वो ये है कि सबसे पहले हम बताते गोद्रुम धाम का मतलब क्या है। गोद्रुम यानी गो और द्रुम, द्रुम कहते हैं वृक्ष को, लता वेली द्रुम, द्रुम यानी वृक्ष और गो यानी गाय, गाय। तो जब अभी हमने कल महाराज से इंद्र की कथा सुनी ना गोवर्धन लीला, तो एक समय ऐसा आया कि भगवान के बाएं अंग के सबसे कमजोर अंग से यानी कि छोटी सी उंगली से भगवान ने इंद्र के सबसे बड़ी शक्ति को परास्त कर दिया। जब संवर तक बादल के अंदर के पानी समाप्त हो गया तब इंद्र को होश आया कि अरे सबसे मेरी शक्ति जो एकदम कमजोर अंग से परास्त कर सकता है वो केवल भगवान ही हो सकता है। तो वो होश में आए और भाग के जमीन पर आए, लेकिन भगवान ने उनकी ओर देखा ही नहीं। जब वो इस तरफ आए इंद्र ऐरावत को लेकर, भगवान ने सर देखा तो सोचा कि उधर से आ जाओ, तो उधर से आए तो भगवान नहीं देखे, तो समझ गए कि अभी कोई भी दिशा हमारे लिए अनुकूल नहीं है। तो वो ऊपर की दिशा में गए, बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने उनको बहुत डांटा कि आपने हकीकत में बड़ा अपराध किया। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा अभी एक ही आपके लिए उपाय है, वो है किसी भक्त का सहारा आप लेंगे तो शायद आपकी ओर एक नजर देख सकते हैं, बाकी आगे का माफी वगैरह करना जो है वो आगे की बात। तो आप सोच सकते हैं इंद्र की स्थिति क्या है, उसका वर्णन करने से समय नहीं, इतनी शक्ति है, उतनी पावर है उनके पास। तो ऐसा श्रेष्ठ देवताओं का देवेंद्र, देवताओं का राजा, इतना उनको बहुत तपस्या करनी पड़ती है, 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते हैं तब जाके इंद्रपद प्राप्त होता है। तो वो गए सुरभि गाय के पास। वो सुरभि गाय भगवान की कितनी सिंपल भक्त है, लेकिन भगवान के लिए वो सर्वश्रेष्ठ। सुरभि गाय भगवान के लिए पूरी प्रेम में समर्पित है। समझो हम और आप होते और सुरभि का भाई जाते इंद्र होकर इतना अपराध करने के बाद, हम क्या बोलते हैं? अभी आए हो, इतना त्राही त्राही मचा दिया, अभी हमारे पास आए हो, चले जाओ यहां से। ऐसे हम लोग बोलेंगे ना, अभी इतना दर्द हो गया हमको, इतना कष्ट हो गया, हमारे कचरे बह रहे हैं, हमारी गौशाला बह रही है, हमारा खाने का घास बह रहा है, इतना आतंक मचा दिया मार देने के हिसाब से। लेकिन भगवान के भक्त कैसे होते हैं, तुरंत उसको स्वीकार कर लिया, एक भी ऐसा वाक्य नहीं बोला जो उसके लिए क्रोध का प्रमाण है, तुरंत आश्रय लिया, तुरंत उसको सुरभि गाय जो है वो भगवान के पास ले जाती है। तो आगे की कथा आपने सुनी, लेकिन उसके पहले सुरभि गाय इंद्र को इस द्वीप पर ले गया और इस द्वीप पर वो उनको बता दिए कि आगे जाकर भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में आने वाले, मधुर प्रेम को बहाने वाले, आप यहां पर बैठकर तपस्या करो, पश्चाताप तो आप हो ही रहा है, अच्छी भावना है आपकी। तो इंद्र ने और सुरभि गाय ने मिलकर यहां पर तपस्या किया है, जिसका नाम है गोद्रुम, एक कल्प वृक्ष के नीचे दोनों ने बैठकर तपस्या किया है और सुरभि गाय की कृपा से इंद्र को गौरांग महाप्रभु का दर्शन हुआ है। उसके बाद में वो भगवान के पास ले गई, फिर भगवान ने उनकी ओर पहली बार देखा है, फिर उन्होंने बहुत सारे पश्चाताप के श्लोक कहे हैं, फिर उसके बाद में भगवान को रजाने के लिए अभिषेक का प्रयोजन दिया है और आगे उनका अभिषेक हुआ है, फिर गोविंद कुंड का निर्माण हुआ है। तो यहां पर जो गौरांग महाप्रभु का नाम पुकारने का महात्म्य है, जो व्यक्ति यहां पर गौरांग महाप्रभु को पुकारता है उसके सारे पाप तत्क्षण नाश हो जाते हैं, वो सारे प्रकार के जो कष्ट हैं, डिस्ट्रेस क्लेश उससे मुक्त हो जाता है तत्क्षण। उसका भौतिक जीवन जो है जिसको हम इंद्रिय भोग से लिप्त कहते हैं वो तो नष्ट हो जाता है, और ज्ञान और तपस्या करने के बाद में जो मुक्ति प्राप्त होती है वो ज्ञान ही यहाँ पर नष्ट हो जाता है। बोलेंगे ये तो गड़बड़ मामला है, एक बार प्रभुपाद जी जमुना जी में किसी घाट में स्नान कर रहे थे तो कुछ भक्त लोग उत्साहित थे, जवान थे, वो कूद गए पानी में, तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे जमुना जी का महात्म्य में, जमुना जी में स्नान करने के बाद पाप नष्ट होते हैं और पुण्य भी नष्ट होते हैं, तो कुछ लोग बाहर आ गए। ये तो हम लोग सोचा नहीं था,
बोले पाप और पुण्य दोनों ही बंधन के लिए कारण है। पाप भी नरक में डालकर दुख भोगने के लिए कारण है और पुण्य जो है वो भी वापस आकर भगवान की विस्मृति में भोग लेने के लिए कारण है। तो वैसा ही ज्ञान है जो ज्ञानी लोग हजारों साल ज्ञान अर्जन करते हैं उसके फल रूप क्या प्राप्त करते हैं? यस, मुक्ति प्राप्त करते हैं। एक तो पहले विरक्ति प्राप्त करते हैं, उसका मुक्ति प्राप्त करते हैं। और यहां कहते हैं कि गौरांग महाप्रभु का नाम लेते ही ज्ञान और तपस्या का सारा फल मूल से नष्ट हो जाता है और केवल श्री कृष्ण प्रेम, गौरांग प्रेम, श्री कृष्ण राधा प्रेम जो है वो यहां पर प्राप्त हो जाता है। और ये जो धाम है इसी गोद्रुम द्वीप में जो सुरभि कुंज है वहां पर 7 कल्पों का वरदान प्राप्त करके मार्कंडेय मुनि, एक कल्प समाप्त हो गया तो जो प्रलय हुआ मिनी प्रलय, वो मैक्सिमम महाप्रलय नहीं था, मिनी प्रलय हुआ था, उसमें वो इतने तड़पे ठंड में, लहरों में, समुद्र के इतने तड़पे, उन्होंने कहा कि मैंने क्यों मांगा ये वरदान 7 कल्प मिलने का। भूख प्यास से तड़प रहे थे लेकिन उनको जीवित रहने का वरदान मिलने की वजह से वो मर भी नहीं रहे थे, उनको लगा मरना अच्छा है इतना दर्द के बदले। तो अचानक उनको एक द्वीप दिखाई पड़ा, द्वीप पहले तो वो भगवान दिखाई पड़े जो एक पत्ते पर, हाँ, बरगद के पेड़ के पत्ते पर लेटे हुए हैं उस भयंकर तूफान जैसे आंधी जैसे समुद्र में और अपना ही अंगूठा चूस रहे हैं आराम से, कोई कष्ट नहीं, क्लेश नहीं, बड़ा आश्चर्य हो गया। फिर वो उनके मुंह में चले गए, भगवान ने उनको सक कर लिया, फिर उनके पेट के अंदर सारे ब्रह्मांडों का, ऐसे कहते हैं 100 वर्ष तक उनके पेट में रहे लेकिन वो एक क्षण के समान था, लेकिन उनके लिए 100 वर्ष बीत गए। कई इन्होंने ऐसे सब जगह विहार किया, फिर बाहर निकले तब जाके इस द्वीप का दर्शन हुआ, गोद्रुम द्वीप का। और फिर इतने भूखे प्यासे थे वो, तो सुरभि गाय ने अपने दूध से उनका पोषण किया, आत्मा का भी किया, शरीर का भी किया, मन का भी किया, क्लेश का भी निवारण किया, बड़े प्रेम से उनको सुदृढ़ किया उन्होंने। और फिर इस धाम का जो महात्म्य है वो सुरभि गाय ने उनको सुनाया है। तो इस तरह से ये जो धाम है इसको नंदग्राम माना गया है और नवद्वीप महात्म्य में कहा गया है कि यहां पर जितने भी द्वीप हैं वो सब 100 कोटि कोस के आकार के हैं। कितने? 1 बिलियन कोस, 1 बिलियन क्रोश, 1 करोश होता ना तो 2 मील का होता है, तो कितने हो गए? 2 बिलियन माइल्स। लेकिन लौकिक दृष्टि से जब हम देखते हैं अपनी आंखों से वो 16 कोस का है गोद्रुम द्वीप, लेकिन हर एक द्वीप जो है वो ऐसे 1-1 बिलियन में, 1 बिलियन कितना था? 100 कोटि का, 100 से ज्यादा पता नहीं कितना होता है लेकिन बहुत सारा होता है। तो ये जो गोद्रुम है यहाँ पर नवधा भक्ति के 9 जो विधि है वो 1-1 विधि 1-1 द्वीप पर उसका प्रमाण है। तो ये जो द्वीप है ये कीर्तन का द्वीप है, इसलिए यहां पर नित्यानंद प्रभु ने आकर नामेर हार्ट खोल दिया। इसका यहां पर खोलने का विशेष कारण है सुरभि कुंजे ते नामेर हाट खुले छे खोदा निकाय बड़ो सुखेर खबर गाय बड़ो सुखेर खबर गाय। तो भक्तिनाथ ठाकुर गाते हैं ये द्वीप पर नित्यानंद प्रभु ने, कीर्तन का विशेष द्वीप है इसलिए यहाँ पर उन्होंने नाम का हाट बाजार सबको केवल प्रेम के मूल्य से, हाँ, श्रद्धा के मूल्य से सबको नाम दे दिया। और ये भी बताया कि ये नाम लेते हुए जिसके आंखों से कभी गलती से भी एक आंसू निकला तो मैं उसका हो जाऊंगा, आई विल बिकम हिज प्रॉपर्टी। साथ साथ ये जो नवधा नवद्वीप है इसमें 1-1 सखी का कुंज है। तो ये जो कुंज गोद्रुम द्वीप है ये तुंग विद्या देवी का कुंज है, यानी कि
हमारा वृंदावन का क्या है, डबारा, डबरारो नाम का गांव है ना, नहीं तुंग विद्या का नहीं है वो, भूल गया अभी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इंद्र को सहारा मिला है, मार्कंडेय मुनि को दुग्ध से सुरभि गाय ने पोषण किया है। इसी द्वीप में हमारे ठाकुर भक्ति विनोद का निवास स्थान है, तो क्या कहें उनके बारे में, जो कमल मंजरी के अवतार हैं और उनकी इतनी महानता है कि वो ऐसे एक ही ऑफिसर थे, लौकिक दृष्टि से मजिस्ट्रेट लॉयर थे, वो एडवोकेट जज थे, सॉरी एडवोकेट नहीं थे, जज थे। उन्होंने कहा कि अभी बहुत सेवा किया मैंने, अभी मुझे रिटायर होना है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन लोगों को इतना तुच्छ लेती थी हमेशा, लेकिन ये व्यक्ति इतने महान थे, इतने मूल्यवान थे कि ऐसे व्यक्ति के लिए उन्होंने आपको कहाँ ट्रांसफर करिए, उन्होंने कहा आपको गोद्रूम में रहना है, ठीक है कृष्णनगर में आपको कोर्ट में ड्यूटी लगाते हैं और वहां से आप कृष्णनगर, कहाँ से पता है आपको, हम जब आए ना कृष्णनगर से आए और उसके अंदर आगे जाकर उनका घर है, स्वानंद सुखदा कुंजन। तो ललिता देवी का जो गौलोक वृंदावन में कुंज है उसका नाम है स्वानंद सुखदा कुंज, वो अपने घर को उन्होंने दिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके लिए कृष्णानगर कोर्ट से उनके घर के दरवाजे तक एक रेल लाइन डाली, आपके घर के तक देर आती है नहीं आ सकती, यहां पर गेट के पास ही रेलवे लाइन है, एक बोगी में एक पैसेंजर केदारनाथ दत्त का, एक मोटरमैन आगे दो पीछे दो सेवक, और एक पैसेंजर को लेके गोद्रूम से कृष्णानगर, तो केवल चार घंटा काम करते थे और 16 घंटे का काम चार घंटे में निपटा के वापस अपने घर पे एक पैसेंजर लौट के आ गए। इतना गौरव आज तक ब्रिटिशों ने किसी भारतीय लोकवृत्ति का किया है। और ये केवल कुशल जज नहीं थे लेकिन एक श्रेष्ठ आचार्य थे, वो दिन में केवल 3-4 घंटा ही सोते थे, रात में कविता लिखते थे और रात में गांव वहां जाकर नाम हट्टर स्थापन करके प्रचार करते थे। इतना सुंदर उनका जीवन, उनका टाइम टेबल है, तो उनका भी घर यहाँ पर है। और हमारे लिए विशेष ऐसी चीजें हैं कि यहाँ पर खड़े रहकर वो अपने, उनका परिवार भी यहाँ पर था, ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भी यहाँ पर निवास किया है उस घर में, उस घर में गौर कुशोत्तर बाबा जी भी आकर उनसे सत्संग किया करते थे और भजन भी किया करते थे। उस घर में आज भी गौर कुशोत्तर बाबा जी का भजन कुटीर है और समाधि भी उधर है, समाधि मतलब पुष्प समाधि, और भजन कुटीर है मेनली, भजन कुटीर। तो वो जब जब करते थे वहां पर आगे पीछे घूमते हुए गैलरी में फर्स्ट फ्लोर पे अपने, तो उनका घर जो जलांगी नदी के सामने था और जलांगी नदी के उस पर, उस तट पर क्या है नवद्वीप अंतरद्वीप, मतलब मायापुर धाम जो हमारा मंदिर है वहां पर। तो एक रात वो जब जब करते थे तो गांव के लोग रात में उनकी जप की आवाज सुनते थे, इतने प्रेम से और दिल से वो जप किया करते थे, लोग याद करते थे गांव के कि इनका जप इतना श्रेष्ठ था कि रात रात को हम सुनते थे उनकी जप की आवाज, डिस्टर्बिंग आवाज नहीं, बहुत ही उत्साहवर्धक आवाज, नॉट डिस्टर्बिंग। तो एक दिन ऐसे जप कर रहे थे तो उनको अद्भुत दर्शन हुआ, जलांगी के परे अद्भुत दिव्य प्रकाश नजर आया, एक नंबर वन। उसके बाद नंबर टू उनको दिखा कि वहां पर एक अद्भुत मंदिर तैयार हुए, और नित्यानंद प्रभु उसमें बता रहे ये मंदिर कालांतर में भविष्य में प्रकट होगा और ये मंदिर से भगवान नाम जो है विश्व भर में प्रचार होगा। तो वो मंदिर का दर्शन भक्तिविनोद ठाकुर ने किया और तो उनका तीसरा दर्शन भी हुआ कि उसी जगह पर अलग अलग प्रकार के लोग, कितने प्रकार के रंग के लोग होते हैं जानते हैं, एक काले रंग के लोग होते हैं, एक गोरे रंग के होते हैं, एक पीले रंग के भी होते हैं, एक गेहूं के रंग के होते हैं, ऐसे कई प्रकार के लोगों के रंग, ऐसे अनेक प्रकार के विश्व में जितने प्रकार के लोगों के रंग है वो सारे रंग के लोग, सारे देश के लोग, सारे जाति के लोग, सारे धर्म के लोग हाथ उठाकर गौरांग महाप्रभु का नाम पुकार रहे हैं, ये दर्शन उनको अपने गैलरी से हुआ और वो आज सत्य में आते हुए नजर आपको आ रहा है। उनका जो दर्शन दृष्टांत उनको प्राप्त हुआ उसका साकार करने का कार्य जो है वो हमारे प्रभुपाद जी, तो वो सपने ही रह जाता
कई लोग गए उस सपनों को पूरा करने के लिए, वो असफल होकर लौट के आए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी सबके द्वारा नेगेटिव प्रचार प्राप्त करने के बाद भी बोलते कि आप बच्चा वहां पर क्यों जाते हो, उधर कुछ होने वाला नहीं है, आपको पैंट शर्ट पहनना पड़ेगा, थोड़ा चमचे काटे से ही खाना पड़ेगा, थोड़ा सा उनकी भाषा में बोलना पड़ेगा, बहुत सारा उनको बताया था, और फिर भी नहीं होगा, उनको थोड़ा सा डिस्काउंट देना पड़ेगा, आप नॉनवेज खा सकते हो वगैरह वगैरह, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसमें से कुछ भी कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए, निराश ना होते हुए, वहां जाकर एक साल ठंड में कष्ट भोगते हुए भी आज ठाकुर भक्ति विनोद का स्वप्न जो है वो साकार किया है। आज देखते हैं ना, काले गोरे पीले हरे रंग, हरे के हरे हर प्रकार के रंग के लोग, हाँ छोटे कद वाले, ऊंचे कद वाले, हर प्रकार के चेहरे वाले सब लोग वहां पर हाथ उठाकर नाचते, जो कभी सुनने में नहीं आते नहीं थे। चाइनीज लोग, उनके देश में तो आज भी भक्ति करना पाप है, वो लोग भी यहाँ पर आते हैं हज यात्रा की तरह, साल में जिंदगी में एक बार आते हैं, यहीं पर धोती कुर्ता पहनते हैं, यहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। हाँ वहां पर कुछ करना मुमकिन नहीं, वो लोग भी बड़ी संख्या में आकर यहाँ पर, कुछ लोग मैं मिला हूँ फुल टाइम यहाँ पर रहते हैं, उनकी लड़कियां नृत्य कलाकार और गायक भगवान के भजन में समर्पित हैं, ऐसे कई चाइनीज लोग यहाँ पर रहते हैं, और बड़ी संख्या में रशियन लोग भी यहाँ पर अभी रहते हैं। वृंदावन में जाएगा तो एक जमाना अमेरिकन लोगों का था, सब अमेरिकन भक्त घूमते थे, आज जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर रशियन लोगों का नाम है। इसलिए हमारी यात्रा में भी एक अनुवाद रशिया में भी होता है ना, रशियन लैंग्वेज का रशियन के। तो ये सब चमत्कार ठाकुर भक्ति विनोद के दृष्टांत के बाद में प्रभुपाद जी ने अपनी पवित्रता के आधार पर प्रकट किया। तो यहाँ के स्थानों का वर्णन करने के पहले उन स्थानों का वर्णन करेंगे जहाँ पर हम नहीं जाने वाले हैं, वो है नरसिंह भगवान का घर जगह, नरसिंह पल्ली। नरसिंह पल्ली यानी नरसिंह भगवान प्रहलाद को हिरण्यकश्यप को मारने के बाद में अपने गोद में लेकर यहाँ पर आए, और यहाँ पर अलकनंदा नदी बहती है, प्रहलाद जी की कई शाखाएँ यहाँ पर बहती हैं। तो अलकनंदा नदी के किनारे इन्होंने बैठकर विश्राम किया, और कहते हैं अपने खून से लथपथ हाथ जो है वो यहाँ पर धोए, और जो आंखें खून से लथपथ पहनी हुई थी वो उतार दी, वो भी त्याग कर दी, प्रहलाद को भी प्रेम से नहलाया और यहाँ पर गोद में लेकर उसको बैठे, और कहते हैं जो व्यक्ति अलकनंदा का स्पर्श करेगा, अलकनंदा का आचमन करेगा, अलकनंदा में स्नान करेगा, सारे कष्टों से पीड़ाओं से पापों से मुक्त हो जाएगा और उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो धाम है, स्कंद पुराण में कहा गया है कि यहाँ पर जो निवास करते हैं इस द्वीप पे वो सब जीवन मुक्त लोग हैं, कैसे भी दिखेंगे आपको, गरीब दिखेंगे, फर्जी वाला, हर व्यक्ति यहाँ पर जीवन मुक्त है, और जीवन के अंत में सब लोग गोलोक वृंदावन प्राप्त करते हैं, ऐसा महात्मा। इसको बंगाली भाषा में वैसे पुराने स्क्रिप्चर में गाड़ी गाचा कहते हैं, गाड़ी गाचा। ये चारों तरफ से दिव्य रूप से ब्रजा नदी से आवृत है, चारों तरफ ब्रजा ही सराउंडिंग दी होल धाम, और यहाँ पर का जो कल्पवृक्ष है जिसके नीचे बैठकर सुरभि देवी निवास करती है वो कितना होगा, अभी वो नजर नहीं आता है, अदृश्य हो गया है, लेकिन अभी भी है, दिव्य दर्शन में वो दर्शन होते हैं इसके। 8 मील का उसका घेरा है, मतलब परिघ 8 मील का रास्ता, उतना क्षेत्र में वो कल्पवृक्ष फैला हुआ है, जो सुरभि कुंज में अभी भी अदृश्य रूप में उसका निवास है। तो ऐसा ही दिव्य धाम है, सब महिमा हुई, ठीक है। यहां पर ऐसे कहा गया है कि समय और स्थान, यानी कि हम बोलते हैं देश काल पात्र, देश काल पात्र का कोई रेफरेंस नहीं यहाँ पर, कोई मतलब नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर काल जो है वो दिव्य रूप से निवास करता है। इससे समझना, हम हमारा तो घड़ी आगे बढ़ रही है, 9 बजे आने का था, 9:30 हो गए, 9:30 के बाद 10:20 भी हो गए, हमारा काल तो चल रहा है आगे, वो लौकिक रूप से है, दिव्य रूप से यहाँ पर देश काल पात्र का कोई परिणाम नहीं है, ऐसे भी बता रहे हैं। यहाँ पर सारे तीर्थ, सारे देवता, सारे ऋषि जो है उसके गौरांग महाप्रभु का पूजन करते हुए निवास करते हैं। रीबो श्री गौरांग महाप्रभु की।
तो
मुझे आपको एक विशेष बात बताना है कि जब भी हम नौवीं धाम में कहीं पर बैठे, चाहे हमारे मंदिर में बैठे या यहाँ पर आके कल आप कहीं और जाएंगे रुद्रदीप जाएंगे, कहीं पर भी बैठकर जब यहाँ पर हाथ ऊपर उठाकर भगवान नाम का जोर जोर से कीर्तन होता है या गौरांग नित्यानंद को पुकारा जाता है, कोई भी भगवान नाम का खास करके गौरांग नित्यानंद को पुकारा जाता है, तो ठाकुर भक्ति में तो बड़ा आनंद होता है। बोले हरे कृष्णा
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 कृष्णा कृष्णा
हरे हरे
हरे
राम
हरे
राम
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 हरे
हरे
नित्यानंद
नित्यानंद। नवद्वीप में और एक विशेष वरदान है कि जो भी व्यक्ति योग्य अयोग्य ज्ञानी अज्ञानी किसी प्रकार का व्यक्ति अधम या उच्चतम गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्रेम से पुकारता है, साक्षात प्रेम और भक्ति उसके पीछे पीछे भगवा क्या ये वरदान है। जो व्यक्ति यहाँ पर गंगा जी की तरफ प्रेम से देखता है, जो व्यक्ति नवद्वीप धाम की भूमि को प्रेम से देखता है, उसके हृदय में प्रेम का संचार होता है। गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनके पीछे कृष्ण प्रेम लेके भागते हैं, उस व्यक्ति के पीछे। उस व्यक्ति के लिए जीवन में कोई अशक्य यानी कि क्या बोलते हैं इसको नामुमकिन ऐसे कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं होता। जो भी व्यक्ति इन लोगों को पुकारता है वहां पर भी और बाहर भी उनके लिए सब अशक्य कार्य जो होता है वो आसान हो जाता है। तो अभी हम सुवर्ण विहार स्थान पर बैठे हैं। ये गोद्रुम का एक बहुत विशेष और प्राचीन स्थान है। एक बार ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो ठाकुर भक्ति विनोद के बाद में आचार्य बने वहीं पर निवास करते थे, तो लोगों को भक्तों को वो सुरभि कुंज से नरसिंह पल्ली तक पैदल यात्रा लेकर जा रहे, उसके बीच में ये स्थान आता है जहाँ पर हम लोग बैठे। उस समय तो बहुत बड़ा घना जंगल था, तो अचानक वो रुक गए बीच में और एकदम एकदम ध्यान से देखने लगे बाई ओर लेफ्ट ओर। उन्होंने कहा कि अपने भक्त को बुलाया, बोला ये जगह किसकी है कि मुझे खरीदना है। तो गुरु जी के आज्ञा जो तुरंत गया शिष्य और ढूंढे ढूंढ के निकाला, जगह का मालिक भी मिला, तो वो भी भक्त था बेचारा और वो महाराज जी को जानता भी था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को गोपाल जी को। तो उन्होंने कहा कि अपने महाराज को बताओ कि महाराज ये जंगल का जगह है, इसमें बहुत सारे खूंखार क्रूर जानवर रहते हैं, शेर सिंह वगैरह रहते हैं, ये आपके मंदिर के मठ की लायक जगह है। तो महाराज को मैसेज मिला, तो उन्होंने कहा कि उनको बोलो मुझे यही जगह चाहिए। तो उनको बड़ा आश्चर्य होगा कि महाराज जी इतना जिद पे क्यों है कि उनको यही जगह चाहिए जहाँ पर कुछ नहीं बन सकता है। तो उन्होंने फिर उनको वो जगह बेचा, महाराज ने खरीद लिया और फिर महाराज उनको सब लोगों को एक दिन वापस लेके गए और भक्तों को ढूंढ ढूंढ के दिखाया कि भक्तों को यहाँ पर पुराने महल के अवशेष मिले, खंबे ऐसे बीम्स पिलर्स ऐसे पुराने एकदम पत्थर के बने हुए। और तब जाकर ठाकुर भक्ति सुदान सरस्वती ने अपने भक्तों को बिठाकर ये बताया कि ये राजा सुवर्ण सेन की जगह है और ये सुवर्ण विहार जगह को कहते हैं। इस तरह से लुप्त हुआ सुवर्ण विहार स्थान जो है उसको ठाकुर भक्ति सुदान जी ने यहाँ पर प्रकट किया। और ये स्थान जो है ठाकुर भक्ति सुदान जी तो कलयुग में यहाँ पर उन्होंने लीला किया, लेकिन इनकी लीला सत्ययुग की है। सत्ययुग में एक राजा यहाँ पर रहता था, बड़ा समृद्ध था, धनी था, बड़ा शूरवीर था, उसकी कीर्ति दूर दूर तक तो फैली थी। उसका नाम था सुवर्णसेन और वो सुवर्णसेन राजा के पास इतनी दौलत थी, इतनी सीमाएं उसकी विस्तारित हो गई थी कि वो उसी में लगा था। उसका दिन रात एक ही ध्यान था, राजा की सीमा कैसे बढ़ाई जाए, राज्य कैसे बढ़ाया जाए, संपत्ति कैसे बढ़ाई जाए, कैसे इंद्रियों में भोग के साधन बढ़ाए जाए। लेकिन नारद ऋषि उनके पास में आए, बोले महाराज उनको उन्होंने पूजा किया, स्वागत किया, अपने आसन पे बिठाया। कि नारद मुनि ने बोलना शुरू किया, उनका सुवर्ण सेन आप जानते नहीं हो कि आप नवद्वीप धाम में रह रहे हो, इस सत्ययुग में ये प्रकट नहीं है इतना गौरव के साथ, लेकिन ये चिरंतन गौरांग महाप्रभु का स्थान है, ये कृष्ण प्रेम और भक्ति का स्थान है, ये सब कलमशों से ज्ञान वाले तपस्या वाले सारे कलमशों से मुक्त होने वाला धाम है, मुक्त कराने वाला धाम है। और आप यहाँ पर रहकर केवल इंद्रिय मुख्य साधन जोड़ रहे हैं। आपको पता है मनुष्य जीवन कितना कीमती है, मनुष्य जीवन केवल भगवान के भजन के लिए। इस मनुष्य जीवन में जो साधन जो सुविधाएं जो उपलब्धताएं उपलब्ध की गई हैं शरीर में, वो तो किसी भी जीव में भगवान ने नहीं दिए। लौकिक दृष्टि से भी गाना बजाना नृत्य करना गायन करना रागदारी में नृत्य करना ताल में नाचना इतनी सारी सुविधाएं, हाँ आकाश तक हमने विमान बना दिया है, स्पेसशिप बना दिया है, किसी ग्रहों पर भी जा सकते हैं आजकल। इतनी सारी बुद्धि केवल इसी जन्म में दी गई है, लेकिन राजा ये सारी बुद्धि जो है वो केवल भौतिक विकास के लिए नहीं दी गई है। इस बुद्धि से जो इतनी प्रगल्भ बुद्धि आपको दी गई है, जिससे आप इतने प्रकार के विशेष भोग विशेष प्रकार से आप उसको भोग सकते हैं, ये विशेष भोग की बुद्धि जो है वो भगवान को जानने के लिए दी है, इंद्रिय भोग को विस्तार करने के लिए नहीं दी है। और आप ये कीमती बहुमूल्य मनुष्य जीवन जो है वो इंद्रिय भोग में व्यर्थ कर रहे हैं, व्यर्थ गवा रहे हैं, और उसके बाद में आप उसका परिणाम भोगने के लिए बार बार नरक में आएंगे एक भोगों का परिणाम सहन करने के लिए। तो नारद मुनि तो नारद मुनि है ना, आप जानते हैं नारद मुनि का शब्द का प्रभाव कितना तेज है, दंग रह गए जो पूरी तरह से इंद्रिय वासना में लिप्त थे। शूरवीर होने पर भी इंद्रिय भोग उनका लक्ष्य था, जीवन का पूरा परिवर्तन हो गया उनका, वहीं पर वो भाव विभोर हो गए नारद मुनि के संग से। तो भक्त की संगी की महिमा इससे हम देख सकते हैं। जैसे कल मैं बैठकर उधर महाराज जी का प्रवचन सोच रहा था, तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में और 11वें स्कंद में बहुत भक्त के संग का वर्णन दिया गया। जैसे वसुदेव जी कुरुक्षेत्र के स्नान करने के बाद में एक बड़ा यज्ञ करने का सोचते हैं, तो उसमें विश्व भर के जितने ऋषि मुनिवर सब आ जाते हैं, स्वयं कृष्ण भगवान भी आए हुए हैं और सारे ऋषि मुनि वहां पर आते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान वसुदेव जी को अपने पिताजी को संतों का महात्म्य समझाते हैं। बहुत सारा दिया, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि हम लोग अभी एक स्थान पर बैठे हुए हैं, एक समय पर हम एक स्थान पर आकर दर्शन कर सकते, एक समय पर एक नदी में स्नान कर सकते, कभी कभी पांच नदियों का संगम होता है तो उसमें स्नान कर सकते, लेकिन उसके ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन स्थान केवल एक समय पर एक ही दर्शन कर सकते। लेकिन जब शुद्ध भक्त का संग होता है तो उसमें सारे विश्व की जितनी भी अनंत नदियां हैं वो स्वयं प्रकट हो जाती है, विश्व में जितने तीर्थ स्थान है वो स्वयं वहां प्रकट हो जाते हैं उस जगह पर जहां पर शुद्ध भक्त बैठकर बोल रहे हैं, और उस स्थान पर सारी देवी देवताएं जितने ऋषि मुनि हैं वो सब वहां प्रकट हो जाते हैं। तो जो सत्संग करता है शुद्ध भक्त का, उसके संग में उसको एक साथ सारे तीर्थ सारे ऋषि सारे देवता सारे नदियां एक साथ संग प्राप्त होता है, और उतनी जितना पाप नाशन होता है जितनी भक्ति और ज्ञान का प्राप्ति होती है वो किसी भी सत्संग में किसी भी और जगह पर प्राप्त हो सकती है बिना उस जगह से जहां पर शुद्ध भक्त बैठकर भगवान की कथा करते हैं। तो नारद मुनि ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त हैं, एक ही संग करने से पूरा सुवर्ण सिंह का परिवर्तन हो गया, सुवर्ण सिंह में वही भाव विभोर हो गए। और फिर नारद मुनि का विदा किया उन्होंने, उस रात्रि को सुवर्ण सिंह राजा को स्वप्न आया। उस स्वप्न में क्योंकि मैं एक बात बताने को भूल गया, नारद मुनि को बताते हैं कि ये नवद्वीप धाम है और इसके अगले आने वाले कलयुग में यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान गौरांग महाप्रभु बनकर अपने भक्तों के साथ पार्षदों के साथ आकर हरिनाम की लीला करने वाले, कृष्ण प्रेम का वितरण करने वाले। तो उसी विचार में सो गए, स्वप्न आया तो उसने गौरांग महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया। गौरांग महाप्रभु गदाधर पंडित के साथ में झूम झूम कर नृत्य कर रहे थे और भगवान नाम का कीर्तन कर रहे थे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
तो सुवर्ण सेन भी स्वप्न में उठकर उनके साथ नृत्य करने लगे। कुछ देर बाद कीर्तन बंद हुआ तो भगवान गौरांग महाप्रभु ने उनको बड़ा प्रेम से आलिंगन दिया और वरदान दिया कि आप जब मैं कलयुग में नवद्वीप में यहीं पर गौरांग महाप्रभु के रूप में जन्म लूंगा तो आप मेरी लीला में भाग लोगे, आपका जन्म भी दोबारा होगा क्योंकि आप मेरे अभिशुद्ध भक्त बन गए, तो मेरी लीला में आप सहायता करोगे, आप बुद्धिमंत नाम खान बुद्धिमंत खान के नाम से आप प्रसिद्ध होंगे, उस रूप में आपका जन्म हुआ। तो ये बुद्धिमंत खान जो है इनकी बड़ी विशेष सेवा होती है, तो बड़े अमीर बनकर उनका जन्म हुआ। तो जब चंद्रशेखर भवन में गौरांग महाप्रभु और भक्तों की मंडली नाटिकाएं करते थे ड्रामा फेस्टिवल, तो सारे ड्रामा फेस्टिवल में सारे ड्रामा फेस्टिवल में वो ड्रेसेस ऑर्नामेंट्स प्रॉप्स वो सब स्पॉन्सर करते थे बुद्धिमंत खान। और एक विशेष काम किया उन्होंने, बहुत मतलब जैसे हमारा धन का जो उपयोग होता है ना, वो तो हमारे परिवार के पालन के लिए तो है ही, लेकिन उसके आगे जाकर वो भक्तों की सेवा के लिए है और होना चाहिए। उसके अलावा अगर कहीं गया तो फिर अपने को कर्मों में बांध देगा। तो बुद्धिमंत खान बहुत धनवान थे, उनके अपने परिवार को पालन करने के बाद भी उनके पास बहुत धन था, सारा धन वो भगवान के भक्तों की सेवा में लगा। उन्होंने विशेष कार्य किया, श्री गौरांग महाप्रभु निमाई पंडित, इनका विवाह जब विष्णुप्रिया से हुआ ना, तो विवाह का जितना सारा खर्चा था वो सब बुद्धिमंत खान ने दिया, एवरी सिंगल पेनी, खाना पीना रहना जो भी डेकोरेशन जो भी ऑर्नामेंट जो भी लेना देना सभी होता था। जय हो राधा माधव। तो ऐसा दिव्य कार्य, ऐसा शादी इसको स्पॉन्सर करने का मौका मिलेगा तो इसका कितना बड़ा इतना सुंदर वर्णन है चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य भागवत में भगवान के विवाह का वर्णन। और बाद में जब भी जगन्नाथपुरी में भक्त जाते थे, हर साल जाते थे बंगाल से जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में भाग लेते थे, तो सारे भक्तों का जितना खर्चा होता था ट्रैवलिंग का वो सब ये बुद्धिमंत काम करते। तो हमने शिवानंद सान सेन का भी नाम सुना है इसके अंदर, लेकिन बुद्ध हाँ हाँ, तो शिवानंद सेन जो उसकी व्यवस्था पूरी व्यवस्था करते थे और सारा जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो तो बुद्धिमंत खान करते। तो वो बुद्धिमंत खान जो सुवर्ण सेन राजा के रूप में यहाँ पर विराजमान थे उनके स्थान पर लोग आए हैं। तो हम लोग सब लोग दिल से उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे, क्योंकि उन्होंने नारद मुनि की अनन्य कृपा प्राप्त की, साथ साथ में महाप्रभु जी की अनंत कृपा प्राप्त की, साथ साथ में बुद्धिमंत खान के रूप में जन्म लिया और साथ साथ में भगवान की लीला में बड़ी विशेष रूप से उन्होंने अपनी सहायता दिया, अनन्य कृपा गौरांग महाप्रभु की प्राप्त। बोलो बुद्धिमंत खान सरकार की, स्वर्णसेन राजा की। इसके आगे हम आज रहेंगे, इसका नाम है हरिहर क्षेत्र। वो श्री नवद्वीप धाम में प्रकट हुई महावाराणसी है। आप लोग मुझे कितने लोग वाराणसी गए? बहुत कम लोग गए, कोई प्रॉब्लम नहीं गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो नवद्वीप में आ गए उसको वाराणसी जाने की जरूरत है, क्योंकि गौरांग महाप्रभु खुद बता रहे हैं कि वाराणसी में 1000 साल तक रहकर तपस्या करते हुए ज्ञान प्राप्त करने के बाद में केवल एक प्रकार की मुक्ति जो किसी को नहीं चाहिए भक्तों को वो प्राप्त होती है। कल बताया ना वो आप लोग में से शायद आप ही गए थे रुद्रद्वीप में, गए थे क्या? गए आगे हाँ हम लोग ही गए थे ना उधर निदय घाट में एक देवी रो रही थी ना, वो कौन थी? सायुज्य मुक्ति जो हमारे भक्तों को नहीं चाहिए वही अकेले यहाँ पर रोती है, बाकी सब लोग हंसते हैं। बाकी सब प्रकार की मुक्तियां जो है वो मांगवाची में उनको निवास स्थान प्राप्त हो गए। तो महावाराणसी में जो जाता है उसका यह स्थिति है, एक तरह से मैं तो कहूंगा कि महावाराणसी में जाकर तपस्या करना ज्ञान प्राप्ति करने प्रयास करना एक तरह से व्यर्थ है, क्योंकि जाना फिर ब्रह्म ज्योति में है, ब्रह्म ज्योति से वापस गिरना है और फिर आके कुछ काम करना है मेहनत करनी है। लेकिन ये महावाराणसी जब नवद्वीप धाम में प्रकट होती है ना तो बड़ा अद्भुत परिणाम उसका होता है कि सारे तीर्थ जितने भी है, गया धाम है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, जितने भी रामेश्वरम है पूर्व में पश्चिम में उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य ईशान्य जितने भी है वो अपने अपने स्थान पर जब रहते हैं तो पापों का नाश करते हैं, लेकिन यही धाम जब आकर ब्रज में नवद्वीप में जगन्नाथपुरी में आश्रय लेते हैं तो उनके अंदर पाप के साथ में पुण्य नाश करने की शक्ति भी उत्पन्न होती है और पाप पुण्य के नाश के साथ में कृष्ण प्रेम देने की शक्ति भी प्राप्त होती है उनको। तो महावाराणसी भी यहाँ पर आश्रय प्राप्त करने के बाद में अपने आप को धन्य मानती है। अब इसकी छोटी सी कथा ऐसी है कि श्रीमद् भागवत में कथा आती है, आप जानते हैं कि भगवान ने काशीराज का वध किया, बाणासुर का जब युद्ध हुआ था ना, बहुत सारे उसके दोस्त लोग भी आए थे, भगवान का हमारा जो दुश्मनी है उसका बदला लेंगे। तो भगवान के साथ युद्ध किया बाणासुर ने, तो भगवान ने उसके एक एक करके हाथ काटना शुरू कर दिया। 100 थे ना, 1000 1000 थे उसके, तपस्या करके प्राप्त किए थे उसके, और उसकी वजह से उसको किसी का युद्ध करने की इच्छा थी। तो ऋषि मुनि ने उनको बताया कि आपके लिए तो एक ही योद्धा है, वो है कृष्ण भगवान, तो उनके साथ में युद्ध करने गया। वो भगवान ने उसके हाथ हाथ होने का जो अहंकार था ना, वो एक एक करके काट 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 के दो पर ला था, और जो बचे हुए भी काटने वाले थे तो शिवजी आकर उस चरणों में गिर गए थे, क्योंकि वो शिवजी का भक्त था, उन्होंने उनसे वरदान ले मांगा था कि जब मैं युद्ध करने जाऊंगा ना कृष्ण से, तो पहले तो कहा कि शत्रुओं को वध करने की मुझे शक्ति देना, तो शत्रु तो जानते थे कौन है उनका, तो शिव जी बड़े चतुर हैं, उन्होंने कहा कि जब भी शत्रु पर आक्रमण करोगे ना मैं आपके साथ रहूंगा, ऐसा नहीं बोला कि हाँ तथास्तु आपको शत्रु का वध हो जाएगा आपके हाथ से, तो वो भी उनका युद्ध कर रहे थे साथ में, देख रहे कि एक एक हाथ कट रहे हैं उनके, तो दो हाथ पर जाकर आए जब बाणासुर, तो शंकर जी भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गए, बोला इसको अभय दान दो। तो उसी युद्ध में काशीराज का वध हुआ, और काशीराज जब निकले थे अपने काशी धाम से, मतलब वाराणसी से, तो जब तिलक हो रहा था उनका, बड़ा गर्व से कहा उन्होंने, मेरे शत्रु का शीश लेकर भी आने वाला हूं, ये मेरा वादा है आप सबसे। तो उनका पुत्र था सुदक्षिण, बोला पापा मैं भी आता हूँ आपके साथ, मतलब क्या जरूरत है बेटा, भजन करो, आप शिव जी के भक्त हो, अच्छी तरह से बैठ के ध्यान करो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको मैं मेरे शत्रु का शीश आकर भेज दूंगा, ऐसे बोल के गया था। भगवान सब जानते हैं ना कौन क्या कैसे बोलता है, तो भगवान ने क्या किया, उसका शीश तो काट दिया, फिर ऐसा एक बाण मारा कि वो कटा हुआ शीश जो है वो बाण के साथ में शीश जाकर काशी में गिरा। सब लोग खुश हो गए, शत्रु का शीश आते गिरा, पापा ने कहा था, राजा ने कहा था, सब रानियां भाग भाग के आए, सब लोग भाग भाग के आए, देखा तो क्या काशीराज का ही सब दुखी हो गए, परेशान हो गए। सुदक्षिण भी अपना ध्यान छोड़कर आया, देखा अरे बड़ा क्रोध से आग बबूला हो गया, फिर शिव जी के सामने बैठा और तपस्या किया उसने, और अपने तपोबल से मंत्र बल तंत्र बल से उसने एक राक्षस निर्माण किया, क्या नाम था उसका, कुछ ऐसा एक भव्य राक्षस निर्माण किया, होता ना जीनी कैसा होता है, वो दिया घिसके पैदा होता है, क्या करे आज्ञा क्या है किम करो थी। तो उसने पूछा क्या करना है, तो जाओ श्री कृष्ण का वध करके आओ। तो वो आया, क्या नाम था उसका, दक्षिणाग्नि, दक्षिणाग्नि नाम था उसका, इतना भयंकर था वो, इतना भयंकर था, उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी, जटाओं से अग्नि निकल रही थी, उसका अस्तित्व ही उष्णा से भरा हुआ था, और वो ऐसे हाहाकार मचाते हुए आग लगाते हुए द्वारका में आए। हमारे भगवान द्वारकाधीश आराम से चौसर खेल रहे थे रुक्मिणी के साथ, बड़े प्रेम से, तो सब लोग भाग भाग आए, त्राहिमाम त्राहिमाम भगवान बचाओ। भगवान ने आसानी से कहा डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं, अभी समाधान कर देते हैं, और सुदर्शन चक्र को बुलाया, ले जाओ सुदर्शन इसका इलाज करो, और फिर केस करने बैठ गए आराम से। वो सब सुदर्शन ने जाकर ऐसा युद्ध किया उसके साथ में कि वो एकदम कैसे ना क्या कहते उसको, ही वॉज फ्रोजन, उसे डीप फ्रिज में डाल दिया उसको, अस्त्र छोड़ दिया उसको, क्या कहते हैं निहारे का अस्त्र बोलते। तो सुदर्शन चक्र ने ऐसा छोड़ दिया अस्त्र उसके ऊपर कि वो पूरा जलता हुआ जो ऐसा अग्नि को लेकर ऐसा आया था ना उष्णता को लेकर, तो एकदम ऐसा यूजलेस हो गया, क्या कहते हैं उसको, ही वॉज लाइक यूजलेस, कुछ नहीं कर पाया, तो भाग गया बेचारा, और चक्र उसके पीछे पीछे भाग गए, और भाग भाग के वो कहाँ गया, वापस वाराणसी आया काशी, और तंत्र से निर्माण किया हुआ शक्ति जो होता है ना, जब वो तंत्र से निर्माण किया हुआ शक्ति अपने लक्ष्य को भेज नहीं सकता है, तो जिसने उसको बनाया उसको आके भेजता है। तो आप बोलेंगे कि चक्र भगवान ने अपने मतलब चक्र खुद के अस्त्र से ही, खुद तो चक्र है ना वो स्वयं, तो उन्होंने पहले क्यों मारा उसको, वो वेट कर रहे थे ना, इतनी मेहनत क्यों करना है, वो जाके अपने आप ही उसका बुमराइंग हो जाएगा कि सुदक्षिण मर जाएगा, तो सुदक्षिण का वध कर दिया उसको, और उसके बाद में चक्र ने अपना शक्ति चलाकर उसको भी मार दिया दक्षिणाग्नि को। फिर बाद में क्या हुआ, सुदर्शन चक्र ने शिव जी की पूरी काशी वाराणसी को जला कर भस्म कर दिया। ये काशी भगवान शंकर ने क्यों बनाई थी, क्योंकि वो जो सती के पिता थे ना दक्ष राजा, वो हमेशा वो सती को कोसते थे कि मेरे सारे जमाई जो हैं बड़े वेल सेटल्ड हैं, भले ऋषि मुनि हो लेकिन अपने अपने जगह पर बहुत सम्मान प्राप्त करते हैं और विश्व के लिए पूजनीय है, तुम्हारा ही जो पति है ना वो हमारे लिए लांछन है, शेम टू बी टू कॉल हिम सन इन लॉ लॉर्ड शिवा। तो पार्वती जी कहती थी मेरे पति पिताजी जो हैं वो बार बार मुझे टोकते रहते हैं, मुझे बहुत दुख होता है, कुछ ऐसा करो कि वो मेरा भी कुछ ऐसा सम्मान बढ़े। तो शिव जी तो विरक्त है, उन्होंने अपने पति के लिए पत्नी के लिए काशी बनाया और काशी का सौंदर्य पुराण में दिया गया है। काशी इतना ऐश्वर्य संपन्न जगह है कि थोड़े दक्ष राजा शांत हो गए कुछ। अभी जैसे हम लोग अभी मेडिकल कैंप करते थे ना, तो हमको सब लोग निठल्लू कहते, निठल्लू का मतलब आम ना गर्मी क्या बोलते हैं, यूजलेस ही बोलते ए एम डी डॉक्टर लाकारीश ये एम एम डी मालवानंद प्रभु क्या करते समझ में आ रहे हैं, इनको भी वंशी मती मारी गई इनकी, गाँव में जाते कुछ कुछ करते रहते हैं, कहाँ खाने पीने का सैलरी भी नहीं मिलती है। फिर जब वैन आया, फिर जब हॉस्पिटल आया, वही लोग सम्मान करने लगे, मेरा बेटा जो है ना हॉस्पिटल का डॉक्टर है मेन। तो लोगों को सम्मान के लिए ना कुछ भौतिक वस्तु चाहिए। वो द्वारकाधीश प्रभु वही थे पहले, बाद में भी वही है वो, लेकिन पहले सम्मान नहीं था, बाद में सम्मान मिला, क्योंकि लोगों को भौतिक वस्तुओं से ही लोगों का सम्मान देने की प्रवृत्ति हो। तो जब काशी निर्माण हुआ तो दक्षराज थोड़ा सा शांत हो गए, क्योंकि अभी कुछ पोजिशन है। तो वो काशी जो इतनी ऐश्वर्य संपन्न थी, वो सुदर्शन चक्र ने जानबूझकर भगवान की इच्छा से जलाकर भस्म कर दी। तो अभी हमारे शिव जी होमलेस हो गए ना, अभी कहाँ रहेंगे वो, तो फिर वो यहाँ पर आकर रहेंगे हरिहर क्षेत्र, यहाँ पर आके निवास किया, यहाँ पर निवास करते हैं चरण करते, क्योंकि वो यहाँ पर आ गए इसलिए उसका नाम पड़ा महावाराणसी, क्योंकि वो भी वहां प्रकट हो गए। ऐसे कहते हैं ना, जब भी कोई प्योर डिवोटी जब कहाँ बैठता है उसी स्थान को व्यासपीठ कहते हैं, उनके लिए अलग व्यासपीठ बनाने की जरूरत नहीं है, वो जहाँ पर भी बैठ गया वहां पर ही व्यासपीठ प्रकट हो जाता है, व्यासासन प्रकट हो जाता है। उस तरह से शिव जी जैसे महान देवता जो महादेव है, जहां आते हैं वहीं वाराणसी प्रकट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर का जो महात्म्य है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो ये है कि एक तो शिवजी महाराज यहाँ पर हमेशा गौरांग महाप्रभु के नाम का लेकर कीर्तन कर रहे हैं। हमेशा यहाँ पर अदृश्य रूप में गौरांग नित्यानंद का नाम लेकर कीर्तन करते हैं, प्रेम भरे भाव से। उनको कोई रिग्रेट नहीं है कि मेरा काशी जल गया, मतलब काशी से बढ़कर जहां यहाँ पे कृष्ण प्रेम को दिन और विशेष काम करते हैं वो। इस गोद्रूम में जो भी व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करता है उसके कान में जाकर हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
बोले कितने लोग मरने को तैयार है, एनीबॉडी रेडी? भाग्यवान जी भी सोचेगा ऐसा कि हमको मरना है, क्योंकि यहाँ पर गारंटी है जो भी व्यक्ति मरेगा किसी भी स्थिति में, कोई जीव कुत्ता बिल्ली भी मरेगा, उसके कान में वो हरे कृष्ण महामंत्र और गौरांग महाप्रभु का नाम लेकर इतने करते हुए प्रयास के आते हैं। एक वहां सुंदर और लीला है, आप जानते हैं कि नवद्वीप महात्म्य जो है वो भक्तिवेन्द्र ठाकुर ने लिखा है, लेकिन उसमें क्या वर्णन दिया है कि नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जी के अंतर्धान होने के बाद में जीव गोस्वामी को लेकर नवद्वीप की यात्रा करा रहे हैं, साथ में कई बार उसमें शिवाज ठाकुर भी आए हैं। तो उस हरिहर क्षेत्र में जीव गोस्वामी को लेकर शिवाज पंडित को लेकर नित्यानंद प्रभु पहुंचे हुए और उन्होंने मिलकर बहुत सुंदर नृत्य किया भगवान का नाम लेते हुए। और नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी से कहा, जीवा जीवा ले लो कृष्ण प्रेम ले लो गौर प्रेम ले लो आपके लिए यहां पर विशेष भेंट है। तो जीव जो है सुनकर बेहोश होकर गिर गए। फिर जब वो बेहोश होकर गिर गए, लोग जगाने की कोशिश कर रहे हैं, शिवाज पंडित उनको बेजी है, उस समय नित्यानंद प्रभु के सामने अदृश्य रूप में केवल उनको दिखने वाले भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने नित्यानंद प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया।
और नित्यानंद प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया कृष्ण मतलब से हमेशा ऐसा ही दिव्य स्थान है। हा? इस तरह से शिवजी और गौरी जी दोनों यहाँ पर त्रिवेंद्र निवास करते हैं, ये उनका विशेष स्थान है। आप वहाँ पर जाएंगे तो उसमें क्या क्या दर्शन है, वहाँ पर एक दर्शन ऐसा है कि भगवान शंकर और कृष्ण इनकी एक मूर्ति है, इसका एक हिस्सा शंकर भगवान है एक हिस्सा कृष्ण है, यानी कि दाहिना हिस्सा जो है वो गहरे रंग का है ब्लू कलर, वो कृष्ण का हिस्सा है और जो लेफ्ट उनका लेफ्ट हिस्सा जो है वो सफेद रंग का है वो शंकर जी है, तो इसलिए उसको हरिहर कहते हैं। इससे भगवान क्या बताना चाहते हैं कि मैं और मेरे शिवजी इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि शिवजी मूल रूप में सदाशिव हैं, वो विष्णु तत्व हैं, वो वैकुंठ में निवास करते हैं और हम लोग ब्रह्मा जी की स्तुति में भी सुनते हैं क्षीरम दधि विकार क्या बोलते
हैं
विशेष योग, तो शिव जी का वर्णन दिया है कि जैसे दूध और दही होता है वैसे मैं और शिव जी हूँ, ऐसे भगवान होते हैं, दोनों का कंपोजिशन एक ही है लेकिन दोनों के परिणाम अलग होते हैं। दूध से दस्त लग सकते हैं और लगे हुए दस्त दही खाकर बंद हो सकते हैं, ऐसा उनका अंतर होता है। तो वही विष्णु तत्व जब तमोगुण का आधिपत्य अपने हाथ में स्वीकार करते हैं, तमोगुण को अपने चार्ज में लेते हैं तो वो शिव जी होते हैं, फिर वो तांडव करते हैं विश्व का संहार करते हैं जब भी भगवान की इच्छा हो। लेकिन मूल रूप से भगवान यहाँ बताना चाहते हैं कि मुझ में और शिव जी में कोई अंतर नहीं है, और शिव जी ऐसे विशेष देवता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र होने के बाद में भी उनको महादेव कहा जाता है, ब्रह्मा उनके पिता होने के बावजूद भी उनकी पूजा करते हैं, ऐसे एक ही व्यक्ति है, और पूरे विश्व में पूरे ब्रह्मांड में शिव नाम के एक ही व्यक्ति है, इस ब्रह्मांड में और उसके आगे अनेक प्रकार के विष्णु है, अनंत विष्णु है, अनेक प्रकार के जीव भी हैं, जीव तत्व भी अनंत है विष्णु तत्व भी अनंत है लेकिन शिव तत्व केवल एक है, और जब भगवान के 64 गुण होते हैं उसमें से 60 गुण विष्णु तत्व में होते हैं, 4 गुण केवल भगवान में होते हैं, लास्ट के रूप माधुरी वेणु माधुरी लीला माधुरी और प्रेम माधुरी, ये 4 विशेष रूप से भगवान में होते हैं, बचे हुए 60 गुण प्रचुर अनंत मात्रा में विष्णु तत्व में होते हैं, उसमें से 55 गुण प्रचुर मात्रा में शिव जी में होते हैं, उसमें से 50 गुण प्रचुर मात्रा में ब्रह्मा जी में होते हैं, और हम सबके अंदर वो 50 गुण अणुमात्र में उपलब्ध होते हैं। तो ऐसे शिव जी हैं, लेकिन ये तो उनका टेक्निकल नॉलेज है, शिव जी की विशेषता क्या है, शिव जी भगवान के परम 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 वैष्णव भक्त हैं, इतने विरक्त है कि जैसे पार्वती ने उनको कहा एक बार महाराज शादी की आपसे हमने घर में विरोध करके भाग के आके तपस्या करके क्या क्या नहीं किया, और हमें तो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन समाज हमको टोकता है, आप भी पेड़ के नीचे हम भी पेड़ के नीचे कुछ घर वर बना दो आप, तो फिर शिव जी ने एक सुंदर हवा महल बनाया जमीन पर नहीं और नहीं, कोई विष्णु का तत्व ना लेते हुए अपनी तरफ से प्रकट किया, उसके अंदर कई निवास कई नगर थे, उसके अंदर कई नदियां कई धाम कई पैलेस महल थे, उसके अंदर क्या नहीं था, इतना ऐश्वर्य प्रकट किया उन्होंने, तो फिर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि अरे भी घर किया तो घर का प्रवेश भी होना चाहिए, उसमें घर प्रवेश ब्राह्मण को बुलाकर वास्तु पूजा सब होना चाहिए, तो उन्होंने सब पूरा, अरे अन्नपूर्णा जी के घर में फंक्शन है तो कौन किसको आमंत्रण नहीं जाएगा और कौन नहीं जाएगा, उसमें सारे विश्व के जितने देवता जितने ऋषि मुनि सब वहां प्रकट हो गए, और भी गृह प्रवेश का विधि हो गया यज्ञ हो गया, सभी शिव जी दान देने के लिए बैठे, सब ऋषि मुनि आके दान ले रहे हैं उनसे, सब जो चाहिए वो शिव जी लुटा रहे हैं, ऐसा नहीं कि शिव जी फकीर बनकर बैठे हैं उनके पास कुछ नहीं है, वो चाहते नहीं है इसलिए वो रखते नहीं, उनके पास सब कुछ है, लोग जाके मांगते उनको देते रहते ना, वो रावण उनका भक्त का कितना अमीर था, सोने की लंका बनाए इसमें, जितने भी भक्त थे उनके वो सब अमीर बने लेकिन वो फकीर बनकर रहते, तो ऐसे सबको दान दिया उन्होंने प्रचुर मात्रा में भर भर के दान संतुष्ट कर दे सकते। फिर एक ऋषि आया बोला महाराज आपका महल दे दो, तुरंत जल देकर कथा दे दिया, फिर पेड़ के नीचे आ गए, फिर वापस पूरा सेरेमनी होने के बाद सबको खिलाने पिलाने के बाद में वापस आए अपने पेड़ के नीचे, ऐसे ही ये तो बाह्य विरक्ति हुई, किसी वस्तु से आसक्त नहीं हुई, लेकिन शिव जी जो है ना अपने सम्मान से भी आसक्त नहीं, क्यों, क्योंकि जब रासलीला का समय हुआ
उनको खबर मिली कि भगवान रास बताने वाले, तो वो दर्शन करने के लिए भागे। जैसे ही रास मंडल के गेट पर पहुंचे, ललिता देवी ने उनको रोक लिया। तो कहाँ जा रहे हो? रास में जाना? नहीं नहीं, यहाँ पर केवल पुरुष को प्रवेश है, एक ही पुरुष को प्रवेश है, बाकी सब स्त्रियां हैं। तो शिव जी बोलते क्या करना होगा? ये स्त्री बनना होगा। आपका नाम क्या बोलिए? मोहन विलास। अगर आपको कहा जाए कि आपको स्त्री बनना होगा, कितने परसेंट रेडी हो गया आप? मुझे बताया गया तो मैं सोचूंगा मेरी वाइफ क्या बोलेगी, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, डॉक्टर लोग क्या बोलेंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर शानदार स्त्री बन गए। लेकिन शिव जी के मन में एक क्षण के लिए भी विचार क्रॉस नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत बोला कैसे बनना है बताओ। बोले जाओ, राजा रानी ने जब बांध कर आंसू बहाए थे एक बार गंगा जी के पार जाकर, वहां मान सरोवर में आप स्नान करो, आपको गोपी शरीर प्राप्त हो जाए। तो वो ऐसे छलांग लगा के गए, तत्क्षण गए, विचार नहीं किया कैसे जाना क्या करना क्या होगा। तत्क्षण इतने भाव विभोर होकर गए कि मुझे एंट्री करने के लिए कुछ मौका मिल रहा है, डुबकी लगाई तो तुरंत गोपी का सुंदर शरीर प्राप्त हो गया। वहां से छलांग लगा कर वापस आए, सीधे वापस गेट पर राज मंडल के। वो सब ललिता दी सखिया सब मुंह में हाथ रख के ठहाका मार के हंस रही है। बोलो क्यों हंस रहे? अपने हंसने का क्या है? आपने बोला जाके गोपी बन रहा है। अरे कोई सुंदर लड़की, सुंदर 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 उत्तम लड़की अगर गले पे साफ, सर पे साफ, गड्ढे पे साफ, हाथ पे साफ, कैसे देखेगी वो? तो वो उनको देखकर हंस रहे हैं, मजाक के रूप में नहीं, उनका कौतुक कर रहे हैं वो कि देखो कितना भाव है इनका, उनको पड़ी नहीं मेरे ऊपर, साफ है कि बिच्छू है कि क्या है मेरे ऊपर, बस कृष्ण का दर्शन करना है और सेवा करनी है, भोग लेने के लिए नहीं आए थे वो रास का। तो इतना प्रेम उनको मन में प्रकट हुआ ललिता दी सखियों के अंदर। ललिता ने अपने हाथ से उनका श्रृंगार किया है और सुंदर गोपी का श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके हाथ पकड़ के वो सजी रही गोपियों की लेकर वो रास मंडल में ले जाते हैं। बीच में जहां पर रास मंडल में राधा कृष्ण व्रत का सिंहासन में विराजमान, उनके हाथ में चरणा देते हैं, सेवा करो, उनकी सेवा करते हैं। चमर दुलाबो कबे हेरी मुख चंद्र राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर। बहुत देर तक सेवा किया, सब सखियां प्रसन्न हो गई। तो फिर उनको ललिता देवी हाथ पकड़ के बाहर ले जाती, आपसे भगवान भगवान राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गई। उनको कहा कि आप अभी रही रहो, नहीं राजमंडल के बाहर रहो और राजमंडल की रक्षा करो, कोई अयोग्य व्यक्ति प्रवेश न करे, उसके आप वहीं पर रहो और अपनी पत्नी के साथ यही निवास करो। तो शिव जी आज भी वहां पर, आज भी वहां पर गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान बंसीवट के बाहर, उनकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे एक बार वो बरसाने में आए थे, बरसाने में क्या है ना, श्री जी को पुकारने के लिए सब लोग आते हैं, एवरीबॉडी कम्स। और वहां पर कैसे है, यूनिफॉर्म होता है सबका, तो ऐसे घुस नहीं सकता है, सबको इधर एक तो श्री बनकर आना पड़ता है, ऊपर से श्रृंगार करना पड़ता है। तो ये श्री जी आ गए, शिव जी आ गए और वो एक कुंड है वहाँ पर, गौरी कुंड, वहाँ पर आके सखी बनकर अपना श्रृंगार करने का प्रयास करें, लेकिन उनको जम नहीं रहा है। तो फिर गौरी जी प्रकट होती है, जैसे गौरी प्रकट होती है वो पूरा तेज वहाँ फैल जाता है, इसलिए उसका नाम गौरी कुंड पड़ा है। गौरी जी कहती है अरे आप पुरुषों को अभ्यास नहीं है श्रृंगार करने का, श्री रूप का, अब हमसे सीखो, आप भी प्रयास करते हो, हम आपका श्रृंगार करें। तो गौरी जी ने उनका श्रृंगार किया है और श्रृंगार करके गोपी बनाकर भेजा है गाँव में शिव जी को पुकारो। इस तरह से शिव जी का भाव ऐसा है कि उन्हें अपना जो मान सम्मान होता है ना, एक महादेव होने का, पहले अनुयायी क्या कहेंगे, अरे अपने पार्वती जी को गोद में बैठकर विरक्त ऋषि मुनियों को विरक्ति का ज्ञान देते हैं, और वो पत्नी को गोद में बिठाकर देने वाले व्यक्ति से व्यक्ति का ज्ञान सुनने में सुनने वालों को कोई कष्ट नहीं, वो एक क्वेश्चन नहीं कर रहे ये क्या चीज है, वो आराम से ज्ञान सुन रहे, इतनी उनकी मैत्री है। जब मोहिनी रूप का दर्शन किया उन्होंने भगवान से जिद करके कि उनको आपका मोहिनी रूप देखना है, तो वो मोहिनी के रूप से लालायित नहीं हुए थे, वो तो अपने भगवान से लालायित हो गए थे, भाग रहे थे। वो भी मोहिनी भी ऐसी थी कि अपने एक एक वस्त्र को उतार उतार कर फेंक फेंक के भाग रही थी, वो जानबूझ के उनके शिष्यों के बीच ही भाग रही। आप क्या बोलेंगे? अरे यहाँ से नहीं भागेंगे, हमारे शिष्य लोग बैठे क्या बोलेंगे, हमारे देवता जो विरक्ति का ज्ञान देते हैं वो ऐसे अधनंगे औरत के पीछे भाग रहे, वो भी उनके पीछे से भागे, मतलब उनको अपने सोशल स्टेटस की भी परवाह नहीं है भगवान के लिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसी चीज से उनको आ सकते नहीं, ना सम्मान से है, ना स्थिति से है, ना इमेज से है, ना किसी चीज से, हम सब लोग आसक्त रहते हैं। तो शिव जी ऐसे भगवान के भक्त हैं जो वैष्णवाना यथाशंभु, और केवल गिने चुने देवता हैं जिनको ब्रज में स्थान मिला है। उसमें से एक है शिव जी महाराज, और एक उनकी पत्नी, और एक उनको पुत्र श्री गणेश जी, उनको काम्यवन ने विष्णु भगवान ने निवास स्थान दिया है। बाकी ब्रज में किसी को रहने का परमिशन नहीं, सब लोग आते हैं और जाते हैं, अपना व्हीकल भी ब्रज के बाहर पार्क करते हैं, चप्पल भी वहां उतारते हैं, और नंगे पैर ब्रज में आते हैं, और रात को उनको रूम नहीं मिलती नो रेसिडेंस, महाप्रसाद भी नहीं मिलता भगवान का। ब्रह्मा जी भी एक बार आए थे महाप्रसाद खाने के लिए, और देख रहे भगवान खा रहे हैं तो उनको भी मिलना चाहिए, तो मछली बन गए वो, बोले तो पानी में जाके हाथ धोएंगे तो हाथ से लगा हुआ जो अन्न है ना उनका, वो मैं मछली के रूप में खा लूंगा। तो भगवान सब भोजन करके कमलाकार कुंडल में बैठ कर गए हाथ धोने के लिए, हाथ धो ही रहे थे देखा तो मछली बनकर ब्रह्मा जी विराजमान है, कटोरे में पानी लिया और जमीन पे जाके धोया और ब्रह्मा जी ऐसे ही रह गए। तो किसी को प्रसाद भी नहीं प्राप्त होता है, किसी को निवास प्राप्त नहीं होता है। ऐसे स्थिति में शिव जी को भगवान ने बड़े ही प्रेम से ब्रज में निवास कर दिया, तो वो शिव जी यहाँ पर विराजमान है। तो मैं ये कर रहा था कि भगवान यहाँ पर ये मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, स्वयंभू मूर्ति है, स्वयं प्रकट मूर्ति है। भगवान ने अपने एक लीला से बताया कि मैं इनसे अभिन्न हूं, मेरा इनसे इतना प्रेम है। तो एक हम शिव जी को देखते हैं जो राक्षस संहार करते हैं, विध्वंस करते हैं, तांडव करते हैं, तमोगुण के इंचार्ज वगैरह वगैरह वगैरह, नटराज है, नृत्य विद्या, गान विद्या, कला विद्या में सबको वरदान देते हैं। और एक शिव जी का स्वरूप है भगवान के भक्त के रूप में, जो ब्रज में उनकी लीला है, जो नवद्वीप में लीला है उनकी, ये उनका एक्चुअली वास्तविक अंग है, वो उनका प्रोफेशनल अंग है, निजी अंग उनका है, भक्त का अंग है। उसके बाद में वहां पर दर्शन है, आप देखेंगे लक्ष्मी पार्वती का दर्शन है, जो हरिहर का जो कृष्ण का अंग है, विष्णु का अंग है, उसके बाद में जो देवी है वो लक्ष्मी है, तो शिव जी का अंग है, उसके बाद में जो है पार्वती जी। तो उसके बाद एक वृद्ध शिव की मूर्ति है, जो वृद्ध शिव के रूप में शिव जी धाम के अक्षर है, वो नवद्वीप में भी उनका प्रौढ़ माया और वृद्ध शिव के रूप में वो विराजमान है। और एक गोपाल की मूर्ति वहां पर है, गोपाल का दर्शन, और विशेष रूप से आप भूलना मत वहां पर गदाधर पंडित जी के चरण कमलों का दर्शन भी है। वहां पर कैसे आए तो पता नहीं चला, लेकिन वहां पर विराजमान है, आप दर्शन जरूर करना। तो इस तरह से क्या क्या बताया, सुवर्ण विहार हो गया, हरिहर क्षेत्र हो गया, फिर क्या हो गया, आमघाट, आमघाट का दर्शन भी आपको कराएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे सर्वप्रथम उनका एक दिन विशेष दिन पे सुभाष आंगन में कीर्तन शुरू किया, जैसे विशेष रूप में शरद पूर्णिमा के दिन 7 साल होने के बाद में भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन एक पहली बार महारास रचाया। लेकिन उसके बाद में भगवान कृष्ण ने ब्रज के कर्ण कर्ण के ऊपर रास किया, ऐसा कोई ब्रज के भूमि का कर्ण नहीं था पर रास रचाया नहीं गया, एवरी वेयर इज रास सर्वे। उसके बाद में फिर विशेष रूप में उन्होंने वसंत ऋतु में रास किया, उसको वासंती रास कहते हैं। लेकिन साल भर हर दिन दर्शन उनका रास होता ही रहा, रात के दिन। वैसे ही सेवास आंगन में रास के रूप में, यानी कि रास लीला और हरिनाम संकीर्तन में कोई अंतर नहीं, वही रास लीला जो प्राइवेट लिमिटेड थी वो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने सबके लिए उसको ओपन कर दिया। वो आनंद, वो विशेषता, वो एक्सक्लूसिवनेस जो था, वो चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण स्वयं इस रूप में उन्होंने वो सारे दिव्य आनंद को आम जनता के लिए बांट दिया। लेकिन बीच रात में उन्होंने ऐसा कीर्तन शुरू किया जहां पर कुछ ही लोग और अति उत्कट भाव को बीच रात में प्रकट करते। तो ये जो आम घाट है यहां पर एक बार वो कीर्तन कर रहे, और जब भी कीर्तन करते थे तो अनेक बार ब्रह्मा जी की एक एक रात का समय तक का अनुभव भक्त को देते थे। कुछ ही समय पृथ्वी का समय होता था, लेकिन उसमें वो ब्रह्मा की एक रात का अनुभव सब भक्तों को कीर्तन देते थे। नित्यानंद प्रभु भी ऐसे थे, एक चक्र में उन्होंने एक बार कीर्तन किया, छोटे छोटे बच्चे थे 3 साल 5 साल 6 साल के, कितना महीना कीर्तन किया, 3 महीने तक कीर्तन किया, 3 मंथ्स कंटिन्यूअसली ना बच्चों को भूख लगी ना नींद आई ना समझा क्या हुआ, और जब वेतन समाप्त होने का समय आया तो पूछ रहे क्यों समाप्त हो रहा है, वाई आर यू स्टॉपिंग कीर्तन। ऐसे अद्भुत कीर्तन यहाँ पर हुआ करता है। तो एक बार जब कीर्तन किया तो भक्तों को प्यास और भूख लगी, तो भगवान ने कीर्तन समाप्त करके बाहर आए और उनकी इच्छा से वहां पर एक आम का पेड़ चढ़ा दिया। डिडी पुट गुटी? नो, उनके केवल इच्छा से वहां पर एक दिव्य आम का पेड़ पकड़ गया। और उसमें कैसे फल निकले आम के, ऐसा नहीं कि अभी लगाया 6 साल के बाद में आओ फिर तब कीर्तन करेंगे तब मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, अभी घर जाके पानी पियो। उसी समय वो पेड़ उनकी आंखों के सामने इतना दिव्य प्रकट हो गया, उसमें अनंत फल प्रकट हो गया आम के, लेकिन किसी भी आम के फल के ऊपर ना छिलका था ना अंदर बिखरी थी, केवल फल की फल। अभी अनुभव कर सकते क्या सर, हमारी मम्मी आपको असल वो निकाल के काट के ऐसा रेडीमेड देती है, फटाफट फटाफट गल करते हैं, आप पूरा आम पकड़ा दिया रात में टाइम होता है ना, कुछ छिलका निकालो तो ये करो फिर उसको पूछो उठले हो, थोड़ा सा आनंद में बाधा आती है उससे, आती है ना। जिन्होंने आम का आनंद लिया उनको पता है कि गुटली और छिलका को कितनी बाधा होती है। तो भगवान ने अपने भक्तों के लिए बिना गुटली और छिलके के आम बनाए हैं, और वो ऐसे इतने इतने से नहीं, कलयुग वाले आम बहुत बड़े बड़े आम, एक आम खाएगा ना तो पूरा पैक हो जाएगा। तो उन्होंने 200 फल निकाले ऐसे लिखा है और सारे 200 भक्तों को खिला दिए, एक फल खाकर सबका पेट भर गया। और एक साल तक उस पेड़ ने भक्तों को अनंत आम दिए, एक साल तक कंटिन्यूअसली, और एक साल के बाद में वो पेड़ जो है वो अदृश्य हो गया। आज उस पेड़ की याद में बहुत सारे पेड़ वहां खड़े, लेकिन वो बेचारे छिलके वाले और गुटले वाले आम देखे, लेकिन उन सारे आम में वही सारी कृपा उपलब्ध है जो आपको समर में आना पड़ेगा। इस बार आपके आनंद के लिए भगवान ने अधिक ज्येष्ठ मास बीच गर्मी में स्थापित किया है, अधिक ज्येष्ठ मास आएगा 16 मई से 14 जून तक। कितनी भयंकर गर्मी हो सकती है उसका अनुभव आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन तब आप पर वो आपको वहां के आम मिलेंगे। तो उसको कहा गया आम घाट, और वो आम घाट जो है बड़े अनंत आम के पेड़ यहाँ पर, बहुत सुंदर दृश्य है और कोई यहाँ पर दर्शन नहीं है, फिर तो आम का ही दर्शन करना हो सकता है, बस से भी कर सकते हो, उसके आगे जाकर लेफ्ट में फिर हरिहर क्षेत्र का दर्शन। हरे क्षेत्र जो है वो कौन सी नदी है, अलकनंदा नदी मंदाकिनी को मिलती है एक जगह पर, और फिर इस जगह मंदाकिनी को छोड़कर आगे चली जाती है और आगे जाकर गंडकी को मिलती है। ये सारी नदियां नवद्वीप में है बाय द वे। तो हरिहर क्षेत्र जो है वो अलकनंदा के पूर्व किनारे में, गंडकी के पश्चिम किनारे, इतना सुंदर दृश्य है वहां पर, आप जरूर उस स्थान का मन से आस्वादन करना, केवल बैठ कर 2 मिनट के लिए ऐसे ध्यान करना, इतना सुंदर वृक्षावली है, सघन वृक्षावली है, सुंदर वातावरण है, नदी का जल बहुत सुंदर, समुद्र की तरह विशाल नदी है, उसके किनारे में ये मंदिर है। हम लोग अक्सर वहाँ बैठ कर कथा करते हैं, लेकिन अभी जब जमीन गिली हुई बारिश की वजह से, तो इस तरह से आज एक विशेष चीज है जो बताना जरूरी है, 10 मिनट बताएंगे आपको। आज वासुदेव घोष इनका तिरुभाव दिवस है। वैसे आज द्वितीय की प्रथम पति बताए, आज भैया दूज का दिन भी है, दीपावली का चौथा दिन है। आज के दिन जो व्यक्ति यमुना जी के अंदर भाई बहन हाथ पकड़कर डुबकी लगाते हैं उन्हें मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है, यमराज का भय नष्ट हो जाता है, यमराज जी ने वरदान दिया है। और आज के दिन कहते हैं कि बहन के हाथ का ही भोजन करना चाहिए। बोले यमुना जी यहाँ पर है ही, क्या करें, कोई उपाय है क्या आपके पास? अरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर चीज का उपाय होता है, मैंने शास्त्र में पढ़ा है कि अगर आप यहाँ पर बैठ के अपने रूम के अंदर स्नान कर रहे हो बाल्टी से मग लेकर और बोल रहे हैं गोमती 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 गोमती, तो गोमती नदी आपके कमंडल में प्रकट हो जाएगी, आप गोमती नदी स्नान कर रहे हैं। आप घर में बोलेंगे गंगा गंगा गंगा, तो गंगा आपके मन में पैदा हो जाएगी, आपको स्नान। आज आप घर जाएंगे यमुना जमुना करके काम करना, यमुना जी प्रकट हो जाएगी, और बहन के साथ में होगी तो उसको भी डाल देना, तो आपका व्रत पूरा हो जाएगा यमु द्वितीया का। और आज तिरुभाव दिवस है वासुदेव घोष का। ये 3 भाई थे, क्या नाम था उनका, गोविंद घोष, माधव घोष और वासुदेव घोष। नित्यानंद प्रभु के बड़े विशेष पार्षद थे और गौर गणेश दीपिका और गौर पार्षद चरितावली, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में उनका वर्णन किया है। और हमारे ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी जिन्होंने ये मठ यहाँ पर स्थापन किया कालांतर में, उन्होंने कहा है कि ये राधा रानी के शरीर के विशेष एक्सपांशन थे, विस्तार के लिए। और गौर गणेश दीपिका में कहा गया है कि ये राधा रानी का एक माधव रस में लथपथ थे, बिल्कुल माधव रस में पूर्णता रस प्राप्त की गई और राधा रानी को आश्रय विजय के रूप में उन्होंने स्वीकार किया माधव रस में पूर्णता से। और ये कविता करने में बड़े निपुण थे, इन्होंने भगवान की बाल लीला, भगवान की संकीर्तन लीला और भगवान की संन्यास लीला का विशेष कविता के रूप में वर्णन किया है। और वासुदेव घोष ने नित्यानंद के प्रभु के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कविता लिखी। एक आर्टिकल आप इंटरनेट में पढ़ सकते हैं, आज समय नहीं भूलने के लिए, उन्होंने कितनी सारी कविताएं की हैं उसका निरूपण उसमें दिया हुआ इंटरनेट में। तो ये गोविंद थे, गोविंद घोष ये राधा रानी के विस्तार थे। और साथ में विशाखा देवी के द्वारा जो गीत लिखे जाते थे कृष्ण लीला में, उसको ये सखियों के रूप में गाया करते थे। तीन सखियां आई, वो गोविंद घोष कौन थे, ये कलावती सखी थे, और माधव घोष कौन थे, रसोल्लासा सखी थे, और वासुदेव घोष गुणतुंगा सखी थे। और तीनों राधा रानी के विशेष गुट में थे। इन तीनों को चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में प्रचार करने के लिए भेज दिया, और उसमें से दो यानी कि माधव और वासुदेव घोष के बंगाल प्रचार करने के लिए गए, और जो गोविंद घोष थे वो अग्रद्वीप में उन्होंने अपना निवास किया। अग्रद्वीप यहाँ पर एक विशेष भी है, यहाँ पर गोविंद घोष की बड़ी सुंदर लीला है, वो कभी आपको बताएंगे आगे जाकर। हर साल जब चैतन्य महाप्रभु की रथ यात्रा हुआ करती थी तो ये तीनों भाई यहाँ से पूरी में जाया करते थे, और साथ जो विशेष सर्कल हुआ करते थे ना नृत्य के रथ यात्रा में, उसमें एक सर्कल में ये तीन भाई गाते थे और वक्रेश्वर पंडित उनके सर्कल में आकर नृत्य किया करता था। जब भी ये गाते थे तो नित्यानंद प्रभु विशेष करते और चैतन्य महाप्रभु दोनों भाव विभोर होकर नृत्य किया करते, भाव विभोर होकर, और जहां पर भी ये गाते थे वहां पर वो प्रकट हो जाते थे नृत्य करने। तो बाद में, सबसे बाद में वासुदेव जो थे वो अपने जीवन के अंतकाल में तामलुक नाम के गांव में उनका निवास था। चैतन्य चरितामृत में आदिलीला में 10वें अध्याय में 115वें श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जो तीन भाई थे गोविंद, माधव और क्या नाम बताया मैंने, आज किसका 13वां दिवस है, वासुदेव। तो गोविंद जी जो थे वो 82वें ब्रांच है, 82nd ब्रांच। माधव जी जो थे वो 83rd ब्रांच, और वसुदेव घोष 84वीं शाखा थी। चैतन्य वृक्ष के 82nd, 83rd और 84th शाखा थी। तो हमारे लिए इनकी जो विशेष कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ये भजन है, गौरंगा तुम्हें मोड़े दया न छाड़ी हो, बोलो गौरंगा तुम्हें मोरे दया न छाड़ी हो,
चरणी राखी हो।
प्राप्ति के हेतु मैंने पूरी दुनिया को छोड़ दिया है, इस कुल को उस कुल को सब मैंने छोड़ दिया है। अब मैंने आपके चरणों का, सुंदर शीतल चरणों का आश्रय प्राप्त किया है। मैं इस कुल से जुड़ा हुआ हूं या उस कुल से जुड़ा हुआ हूं, मुझे उससे कोई संबंध नहीं है। मैं सब कुछ त्याग दिया हूं। मैं एक ही भिक्षा मांगता हूं कि आपके चरणों में मुझे आप रखें और मुझे अपना कहें, अपना बोले। वसुदेव घोष कहते हैं कि अब मैंने आपके चरणों को बहुत कसकर पकड़ा है, मुझे वही रहना है और आपके चरणों की शीतल छाया में अपने जीवन को बिताना है। हरी बोल। फिर वो गाते हैं, सुंदर कुंडल नयन विशाला जल सोहे सुंदर कुंडल नयन विशाला गल सोहे वैजयंती माला
Thank you.
एक भजन
गाए आपके परमेश्वर ने।
जदि गौर न होई तो तब की होई तो कैमोन राधार महिमा प्रेमा रस सीमा जगत जाना तो जदि गौर न होई तो तबे की होई तो कैमोन धोरी तांगे मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चतुरी सा
अगर गौरांग महाप्रभु विश्व में युग अवतार के रूप में कलयुग में अवतरित ना होते तो हम लोगों का क्या हो जाता? कैसे हम कलयुग का कष्ट भरा जीवन सह पाते? इस विश्व में राधा रानी की महिमा, उनकी प्रेम रस की सीमा हमें कौन समझाता? Who would have had the power of rendering ecstatic devotional service that follows in the footsteps of damsels of Braja? Braja युवतियां जिस प्रकार से अति आनंदमयी भगवान की भक्ति भक्ति करती है, वो हमें कौन बताते उसके बारे में और कौन हमें प्रवृत्त करता है? वास्तविक रूप में ब्रज गोपियां जैसे कुशलता से भगवान की भक्ति करते हैं, वही भगवान के वृंदा देवी के द्वारा निर्मित जो मधुर वन है वृंदावन, उसमें प्रवेश करने की एक योग्यता है। ओ भाइयों, पुनः पुनः आप गौरांग महाप्रभु का नाम उच्चारण कीजिए, पुनः पुनः उनके गुण का गान कीजिए। जस अपने हृदय को हमेशा सादगी में रखिए। जस्ट ट्राई टू कीप योर हार्ट वेरी सिंपल। नॉट इवन वन पर्सन विद इन दिस ओशन ऑफ नेशंस हैज एवर सीन सच मैग्नानिमस पर्सनालिटी लाइक ही। इस विश्व में आज तक के इतिहास में इतने दयालु इतने कृपालु भगवान का अवतार आज तक किसी ने दर्शन नहीं किया। मैं वासुघोष बार बार गौरांग का नाम पुकारता हूं, फिर भी मेरा हृदय प्रेम भरे भावना से पिघलता नहीं है। फिर मैं इस देह का बोझ लेकर क्यों घूम रहा हूं? लगता तो ऐसे है कि विधाता ने मेरे हृदय की जगह पर एक पत्थर को रख दिया है। वासुघोष हमारे लिए गा रहे हैं, उनका हृदय तो पिघलता है, लेकिन वो संत लोग जो है सामान्य जन के सर पर आकर अपना भाव उनके कल्याण के लिए प्रकट करते हैं। सब लोग गौरांग महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं, वासुदेव घोष को प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा याचना करते हैं कि वो हमारा हृदय पत्थर जैसा है, वो गौरांग महाप्रभु का नाम उच्चारण करते हैं पिघले कृष्ण भक्ति से संपृक्त हो जाए, हमारा ये तुच्छ मनुष्य जीवन सफल हो जाए और भगवान के चरणों में हमें आश्रय प्राप्त हो।
गौरांग
हरे कृष्ण।